हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और तब दादी ने झलक को जैसे ही डरा हुआ देखा, दादी ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गई नहीं अभी तक? जानबूझकर दादी ने उसे सख्ती से डांटा था। तब जाकर सिद्धार्थ ने झलक के बाजुओं को छोड़ता है और आकांक्षा से बोला, चलो चले यहाँ से। अब आकांक्षा ने आज झलक को घूरना बंद किया, क्योंकि उस वक्त वो दादी माँ के सामने अपनी छवि अच्छी रखना चाहती थी। झलक को बुरा भला कहकर वो दादी माँ की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। वो अपने चेहरे पर एक फीकी से मुस्कुराहट लाते हुए जाने से पहले वो दादी माँ के पास आती है और अपनी नाराज़गी के बावजूद आकांक्षा ने विनम्रता से मुस्कुराया और दादी माँ की ओर थोड़ा सा सर हिलाया और आशीर्वाद लेते हुए बोली, दादी माँ, मैं और मिस्टर खुराना जा रहे हैं। दादी माँ ने लापरवाही से उन्हें जाने का इशारा किया। फिर आकांक्षा सिद्धार्थ के साथ लिविंग रूम से बाहर चली गई। जाने से पहले सिद्धार्थ खुराना ने झलक को एक किलर लुक दिया था। वेल, अब जैसे ही आकांक्षा और सिद्धार्थ खुराना वहां से बाहर निकले, झलक के चेहरे पर थोड़ी देर पहले वो धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, आखिरकार आकांक्षा को जलाने के लिए, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने आकांक्षा के साथ साथ मिस्टर सिद्धार्थ खुराना को भी नाराज कर दिया था। इतने दो पावरफुल लोगों से पंगा लेकर कहीं ना कहीं झलक को डर लग रहा था कि कहीं इन दोनों के चक्कर में वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। उसने दोनों ही अमीर लोगों से पंगा ले लिया था। वेल, तभी दादी माँ झलक की ओर देखकर बोली, झलक, तुम तीन दिनों तक हमारे मेंशन में ही रहोगी, तुम रहोगे ना मेरे साथ? अब जैसे ही दादी माँ ने ये कहा, झलक तो जानती थी कि उसने सिद्धार्थ खुराना को नाराज किया है और इसीलिए उसे अपने परिवार की भी चिंता होने लगी थी, और इसीलिए अपने परिवार के खातिर वो ओबेरॉय साहब के सामने और गिड़गिड़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए अब वो केवल उर्वशी खुराना पर ही भरोसा कर सकती थी, क्योंकि आखिरकार उर्वशी जी से तो उससे कोई दुश्मनी थी ही नहीं। मन में वो कुछ सोच रही थी और फिर बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आपके साथ क्यों रहना पड़ रहा है। जैसे ही हलक ने पूछा, तब दादी माँ हल्का सा मुस्कुराई और प्यार भरी आवाज में बोली, बेटा, तुम्हें मेरे नालायक पोते सिद्धार्थ ने धमकी दी ही ना, इसलिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब तक कुछ दिन तुम खुराना मेंशन में रहोगी तो मुझे तुम्हें बेहतर तरीके से जानने का मौका भी मिल जाएगा। जैसे ही दादी माँ ने ये जवाब दिया तो झलक को सब कुछ याद आ गया कि किस तरह से दादी माँ ने पहले से ही विदेशी डॉक्टर द्वारा उसके पिता का इलाज कराया है और वो जल्दी ही अब ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ उसके भाई और माँ को भी किराए के घर से दूसरा अपना खुद का घर खरीद कर दिया है, तो एक तरह से उर्वशी जी ने कितने सारे उस पर एहसान किए हैं, तो इसीलिए झलक उनकी बहुत बहुत आभारी थी। लेकिन उसे उसका उपकार चुकाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। वो खुद को केवल संतावना ही दे सकती थी कि उसने सिद्धार्थ खुराना को बचाया था और इसके बदले में दादी माँ ने उसके पिता को बचाया, तो ये संतुलित था। वेल, तब झलक दादी माँ की ओर देखकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने ईमानदारी से उन्हें थैंक यू बोला था और फिर हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन दादी माँ, इस तरह से भला मैं तीन दिनों तक कैसे आपके साथ रह सकती हूँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे पिता बीमार हैं, भले ही आपने उनका अच्छे से इलाज करवाया है, साथ ही साथ अपने मेरी माँ और भाई को भी रहने के लिए छत दी है। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, लेकिन भला मैं इस तरह से आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? झलक उर्वशी जी के साथ रहने में थोड़ा सा झिझक रही थी। तब उर्वशी जी ने झलक का हाथ पकड़ते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोली, बेटी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें शायद इस तरह से मेरे साथ रहना काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा। आखिरकार तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जानबूझकर दादी माँ झलक को अपने पास रोकना चाहती थी, उनके पास एक रीजन था। वेल, उसके बाद आगे बोली, तुम अपनी हालत भी तो देखो, क्या तुम ऐसे हालात में अपनी माँ के सामने जाओगी? इस तरह अपने पिता के सामने जाओगी? जब उन्हें होश में आ जाए आएगा, अगर वो तुम्हारी इस तरह से हालात देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे शरीर पर हर जगह निशान मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी हालत में अपने घर जाना चाहिए बेटा। 3 दिनों की तो बात है, देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। अगर 3 दिनों तक तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे बूढ़ी को भी 3 दिनों तक एक प्यारी बेटी के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। अब जैसे ही दादी माँ ने इन द लास्ट झलक को थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल किया, अब झलक थोड़ी सी मजबूर हो गई थी और उसके बाद उसने उनके साथ रहने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन अगले 3 दिनों तक उसने अब खुराना विला में रहने का फ़ैसला कर लिया था। झलक का ये 3 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। सुबह दादी माँ के साथ योगा किया करती थी, उसके बाद बगीचे में फूल और घास की देखभाल करने, साथ ही साथ दोपहर में एक साथ पर जैसे टेस्टी खाना बनाने, लंच बनाने, शतरंज खेलने और साथ साथ उनके साथ कुकिंग करने में कब ये 3 दिन गुजर गए ना तो झलक को पता चला और ना ही दादी माँ को पता चला था। और जल्दी ही चौथी सुबह दादी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद झलक ने अपना सामान पैक किया और अपना सामान लेकर नीचे आ गई और सोफे पर बैठी दादी की ओर देखकर थोड़ा सर हिलाकर आज्ञा मांगते हुए बोली, दादी माँ मैं जा रही हूँ, आपने बहुत प्यार दिया मुझे, ये 3 दिन हमेशा याद रहेंगे। ऐसा बोलकर वो दादी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई थी और उनकी मुस्कुराकर देखते हुए उन्होंने उसे गले से लगा लिया था। और दादी इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोलती है, सचमुच बेटी ये 3 दिन हंसी खुशी तुम्हारे साथ कैसे बीत गए, हमें एहसास नहीं रहा, हमें तो लगा कि हम एक बार फिर से जवान हो गए हों। जैसे ही दादी माँ ने ये कहा, झलक हल्का मुस्कुरा दी और चहकती हुई आवाज़ में बोली, बिल्कुल आप अभी भी जवान हैं और मैं मन में ये कामना करती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से हंसते खेलते और जवान रहें। अब मैं जा रही हूँ, आप अब मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसा बोलकर वो जाने लगी। उर्वशी जी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो झलक को वहाँ से जाने दें, क्योंकि झलक के साथ ये 3 दिन उनकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक थे। तब दादी माँ कुछ पल सोचते बोली, जब भी तुम्हारे पास समय हो आप मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? ऐसा बोलकर वो मुस्कुराने लगी थी। तब झलक ने उन्हें हाँ बोला था। अब वो बाहर निकलकर सोचने लगी थी वो यहाँ वापस आ सकती है या नहीं, ये अब उसका डिसीजन था। जल्दी ही दादी माँ ने उसके लिए कार अरेंज की थी। गाड़ी के चलते ही झलक ने एक राहत की सांस ली थी, वरना उसे ऐसा लगने लगा था कि इन 3 दिनों में वो पूरी तरह से खुराना मेंशन में कैद होकर रह गई थी। और जैसे ही वो वहाँ से निकली, कुछ दूरी पर जाने के बाद रास्ते में उसे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। उसने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर यहीं कार रोक दो। ड्राइवर हैरानी से झलक की ओर देखने लगा और ऐतराज़ जताते हुए बोला, लेकिन मैडम यहाँ तो आपका घर नहीं है। तब झलक उस ड्राइवर की ओर घूरते हुए बोली, ये आपका मसला नहीं है, मैंने कहा ना गाड़ी यहीं रोक दो। ऐसा बोलकर जल्दी ही झलक ने वो गाड़ी रुकवा दी थी। गाड़ी से उतरने के बाद झलक ने एक नज़र ड्राइवर की ओर देखा था और उसका ढेर सारा शुक्रिया अदा करने के बाद कहा कि उसे सिर्फ यहीं उतरना है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सब ड्राइवर ने झलक की बात सुनकर उसकी ओर देखा, लेकिन फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कह सकता था और झलक को वहाँ उतारने के बाद वो सीधा वहाँ से चला गया था।
वेल, झलक गाड़ी से उतरकर सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ गई थी और जैसे ही वो वहाँ गई उसने जल्दी से अपना क्रॉस बॉडी बैग लिया था और मेडिकल स्टोर में चली गई और फार्मासिस्ट से जाकर वो बोली, मुझे सबसे पहले आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियाँ दो, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उसे खुराना परिवार के घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था और जैसे उसे अब बाहर निकलने का मौका मिला उसने सबसे पहले गर्भ निरोधक दवाइयाँ खरीदने के बारे में सोच लिया था।